मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तेषां पुलाकादीनां भूयोपि विशेष प्रतिपत्त्यर्थमाः। उन पांच पुलाकादिक मुनिराजों की और अधिक भेदों को जानने के लिए, उनकी जानकारी कराने के लिए आचार्य उमास्वामी आगामी सूत्र कहते हैं, संयमश्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेश्योपपादस्थान विकल्पतः साध्याः। त एते पुलाकादय संयमादिभिरष्टभिरनुरोगैः साध्या व्याख्या। वे जो पुलाकादिक मुनि हैं उनको आठ प्रकार के जो अनुयोग होते हैं उनके माध्यम से व्याख्यात किया जाता है, उनकी व्याख्या इन आठ के माध्यम से संभव है। तद यह था, वो इस प्रकार है। सबसे पहले क्या था? संयम। तो संयम की अपेक्षा से अगर उनका वर्णन करें तो वर्णन हो सकता है। पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशीला। पुलाक मुनि, बकुश मुनि और कुशील मुनियों में जो पहले वाले प्रतिसेवना कुशील है, दूसरे वाले कौन से हैं? कषाय कुशील है। तो उनमें से प्रतिसेवना कुशील को ले लें तो इन तीन मुनियों के द्वयोः संयमयोः, ये तीन मुनि दो संयमों में सामायिक छेदोपस्थापनयोर वर्तन्ते। सामायिक और छेदोपस्थापना इन दो संयमों में वर्तते हैं। कषाय कुशीलाः द्वयोः संयमयोः परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपरायययोः पूर्वयोश्च। कषाय कुशील मुनि जो हैं वो दो संयमों में वर्तन करते हैं और पूर्व के दो संयमों में भी करते हैं। ये तो परिहार विशुद्धि संयम और सूक्ष्म सांप्राय संयम। अब सूक्ष्म सांप्राय संयम दशम गुण स्थान में होता है, तो कषाय कुशील मुनि दशम गुण स्थान तक जा सकते हैं। फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि उसके ऊपर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब चार संयम बता दिए कषाय कुशील मुनि को, बाकी तीनों मुनि के केवल दो संयम बताए थे। कषाय कुशील मुनि को परिहार विशुद्धि, बड़ी भारी रिद्धि होती है वो प्राप्त होती है, और सूक्ष्म सांप्राय चारित्र भी प्राप्त होता है। फिर प्रश्न आता है कि उसके ऊपर क्यों नहीं जाते, क्योंकि उसके ऊपर कषाय नहीं होती है। तो कषाय कुशील जो है उनकी अंतिम सीमा दशम गुण स्थान है, इसलिए उनके यथाख्यात संयम नहीं होता, क्योंकि कषाय है ना, तो हो नहीं सकता। निर्ग्रंथ स्नातका एकस्मिन्नेव यथाख्यात संयमे संति। निर्ग्रंथ और स्नातक एक ही यथाख्यात संयम में है, उसके नीचे नहीं होते। अब ये संयम की अपेक्षा से चर्चा हो गई, एक बार आप बिना देखे बता सकते हैं पुलाक मुनि, बकुश मुनि, प्रतिसेवना कुशील मुनि, ये तीन मुनि कौन से संयम में रहते हैं? दो संयम में रहते हैं। कौन से दो? सामायिक और छेदोपस्थापना संयम में। फिर कषाय कुशील मुनि है, कषाय कुशील मुनि परिहार विशुद्धि संयम में, और दशम गुण स्थान का जो सूक्ष्म सांप्राय संयम है उसमें रहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि सारे कषाय कुशील मुनि सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान को प्राप्त कर ही लें ऐसा नहीं है, लेकिन सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान को अगर कोई मुनि प्राप्त करेंगे तो वो तीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सीमा सामायिक और छेदोपस्थापना संयम तक की है, और सामायिक छेदोपस्थापना संयम नवम गुणस्थान तक होता है। तो नवम गुणस्थान के ऊपर नहीं जा पाएंगे वो। और कषाय कुशील मुनि जो है वो परिहार विशुद्धि संयम को भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनको चौमासा नहीं करना पड़ता, जो हमेशा चलते रहते हैं, जिनके शरीर से किसी जीव का घात होता ही नहीं, वो परिहार विशुद्धि संयम है, वो इनको प्राप्त होता है, कषाय कुशील मुनि को। और भी क्या क्या होता है वो आगे के अनुयोगों में बताएंगे। तो चार संयम हो सकते हैं कषाय कुशील मुनि के, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संप्राय। निर्ग्रंथ और स्नातक जो हैं वो सूक्ष्म संप्राय के ऊपर वाले हैं, इसलिए उनके पास एक यथाख्यात संयम ही होता है। श्रुतम, संयम के बाद दूसरा अनुयोग कौन सा था? श्रुत। तो श्रुत में कहते हैं पुलाक बकुशक प्रतिसेवना कुशीला, फिर से उन्हीं तीनों को पहले लिया, उत्कर्षीण अभिन्नाक्षर दश पूर्व धारा, अधिक से अधिक अभिन्नाक्षर दश पूर्व के धारक होते हैं। नमो दस पुव्य आणम, ये जो पढ़ते हैं ना अपन, वो इनको नमस्कार होता है अधिकतम। पुलाक मुनि भी वहां तक के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दस पूर्व का अखंड ज्ञान, बकुश मुनि और प्रतिसेवना कुशील मुनि। कषाय कुशीला निर्ग्रंथाश चतुर्दश पूर्व धरा, और दस पूर्व के ऊपर का ज्ञान जो है वो कषाय कुशील मुनि और निर्ग्रंथ मुनि दोनों 14 पूर्वों के धारी होते हैं श्रुत केवली। फिर ये तो उत्कृष्ट हो गया, जगन्येन, जगन्य से पुलाकस्य श्रुतम आचार वस्तु, पुलाक मुनि का जो श्रुत ज्ञान है वो आचार वस्तु। आचार वस्तु उनका ज्ञान है। और बकुश, बकुश कुशील निर्ग्रंथानाम, बकुश कुशील और निर्ग्रंथ इन तीनों का जगन्य श्रुतम, ध्यान देना, पुलाक और बकुश तो छठे से नौवे गुणस्थान तक है, कुशील जो है वो छठे से दसवें गुणस्थान तक है, निर्ग्रंथ जो है वो ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान तक में है। तो इन तीनों का जगन्य ज्ञान, अब केवल ज्ञान नहीं हुआ है, श्रुत ज्ञान कितना है वो बता रहे हैं। श्रुतम अष्टौ प्रवचन मातर, आठ प्रवचन माता है उनका ज्ञान, आठ प्रवचन माता है ना, जिनवाणी माता, प्रवचन का अर्थ जिनवाणी है और माता यानी माता है। अब कितना सुंदर विशेषण है जिनवाणी के लिए, आठ प्रवचन माता उनका ज्ञान होता है, बकुश मुनि का, कुशील मुनि का और निर्गंध मुनि का। आठ प्रवचन माता क्या है? तो बोले पांच समिति और तीन गुप्ती, ये आठ प्रवचन माता है। तो इनका ज्ञान होना जगन्य ज्ञान है उनका। और ये समिति और गुप्ती, समिति प्रवृत्ति है, गुप्ती निवृत्ति है, तो बस इतने ज्ञान में तो बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि इन तीन मुनियों में जो निर्ग्रंथ मुनि का नाम आया ना, ये निर्ग्रंथ मुनि केवली बनने वाले मुनि का नाम है, तो आठ प्रवचन माता इनका ज्ञान है। स्नातका, स्नातक कौन है? दोनों केवली, सहयोग अयोग दोनों केवली हैं। स्नातक अपगत श्रुता केवलिना, उनके पास श्रुत ज्ञान होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? केवल ज्ञान है उनके पास। तो केवल ज्ञान जो होता है क्षायिक ज्ञान है, क्षायिक ज्ञान के साथ क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञानावलोकन के क्षय से क्षायिक ज्ञान हुआ है। तो ये दूसरा अनुयोग पूर्ण हुआ। पहला अनुयोग क्या था? संयम। दूसरा अनुयोग क्या था? श्रुत। अब तीसरा जो है प्रतिसेवना। प्रतिसेवना का अर्थ ये जो अतिक्रमण वगैरह होते हैं, जो मतलब दोष लगते हैं, जो कौन से दोष लग सकते हैं वो बता रहे हैं। पंचानाम मूल गुणानाम, पांच जो मूल गुण हैं, पांच मूल गुण कौन से होते हैं? पांच महाव्रत, रात्रि भोजन वर्जन से च, और जो महाव्रत की जो भावना है उसके अंतर्गत रात्रि भोजन का त्याग भी है। अहिंसा व्रत की जो पांच भावना है उसमें आलोकित पान भोजन है, अर्थात सूर्य प्रकाश होता है तब भी वो भोजन पानी लेते हैं, तो उसका भी पराभियोगाद बलाद अन्यतम प्रतिसेवमान, उसका प्रतिसेवन करने वाले, माने उसके प्रतिकूल सेवन करने वाले। दो कारण बतलाए कि प्रतिकूल सेवन क्यों कर रहे हैं वो, पांच महाव्रत और रात्रि भोजन त्याग से विपरीत क्यों कर रहे हैं वो, तो उसका उत्तर दिया पराभियोगात, किसी अन्य के निमित्त से, उनके अभियोग से, और बलात् जबरदस्ती उन पर उपसर्ग करके उनके मुंह में रात को कुछ डाला जा रहा है, ऐसी स्थिति में प्रतिसेव माना उसका सेवन करते हुए पुलाको भवती, पुलाक होते हैं, प्रतिसेवना होती है उनको। लेकिन देखिए पुलाक मुनि मन से निर्मल रहते हैं, ये तो दूसरों के उपद्रवों से ये सब स्थितियां बन रही, लेकिन मन से निर्मल होते हैं, इसलिए पुलाक मुनि की आगे चलकर की जो लेश्या बताएंगे इनका तुलनात्मक अध्ययन, परस्पर अध्ययन भी करने योग्य है। अभी तो एक एक का वर्णन कर रहे हैं, फिर उन सभी अनुयोगों के का वर्णन एक मुनि में लगा करके अपने को एक बार देखना होगा, दूसरे मुनि, तीसरे, सभी में। तो ये पुलाक मुनि हो जाते हैं, यानी उनके महाव्रत भी उपसर्गों में खंडित होते हैं, अपूर्ण हो जाते हैं महाव्रत, जो अपेक्षित है उससे नीचे चले जाते हैं। बकुशो द्विविधः, बकुश मुनि के दो भेद हैं, उपकरण बकुश, शरीर बकुशश्चेति, उपकरण बकुश और शरीर बकुश। बकुश का अर्थ बतलाया था चित्रल, चित कबरा जो हिरण होता है ना, जिसके ऊपर सफेद सफेद वो निशान रहते हैं, पूरा ब्राउन होता है, उसके ऊपर सफेद सफेद निशान होते हैं, चीतल बोलते हैं उसको, चीता नहीं चीतल, वो एक हिरण है। तो ऐसे परिणामों वाले जो मुनि हैं वो उपकरण बकुश है और शरीर बकुश है। तत्रोपकरण बकुश हो, अब उन दोनों में से जो उपकरण बकुश है वो कैसे होते हैं? बहुविशेष युक्तोपकरण, बहुविशेष युक्तोपकरण आकांक्षी, बहुत विशेषताओं से युक्त उपकरण की आकांक्षा रखते हैं, एकदम स्पेशल उपकरण चाहिए उनको, पिछी कमंडल शास्त्र वगैरह एकदम हाई क्वालिटी होना, हल्का फुल्का नहीं चले। और शरीर संस्कार सेवी शरीर बकुश है, फिर शरीर के संस्कारों का सेवन करने, एकदम साफ सुथरे रखते हैं शरीर, धूल वगैरह साफ कर देते हैं, वो जमने नहीं देते शरीर, वो शरीर बकुश है। शरीर बकुश, अगर शरीर को कुछ ज्यादा श्रम हो जाए तो फिर वो कभी उस श्रम का निवारण करके भी शरीर का ध्यान रखते हैं, ये है। प्रतिसेवना कुशीलो, फिर कुशील मुनि के भेद बता रहे हैं, प्रतिसेवना कुशीलो, प्रतिसेवना कुशील जो होते हैं, मूल गुणाना विराधयन, मूल गुणों को विराधित न करते हुए, उत्तर गुणेशु कांचित विराधनाम प्रतिसेवते, उत्तर गुणों में कुछ विराधना का प्रतिसेवन कर लेते हैं। राजवार्तिक में लिखा है कि ग्रीष्म काल में जंगा प्रक्षालनादि सेवनात्, उसको देख लेते हैं एक बार। हो सकता है वो कषाय कुशील मुनि के लिए हो, पर कषाय कुशील मुनि के लिए लिखा है कि ये ऊपर पढ़ ही लेते हैं पंक्ति। कषाय कुशील निर्ग्रंथ स्नातकानां प्रतिसेवना नास्ति। कषाय कुशील मुनि, निर्ग्रंथ मुनि और स्नातक मुनियों के प्रतिसेवना है ही नहीं, यानी उनको कोई दोष नहीं लग रहा है इन तीन मुनियों को। भद्रबाहु स्वामी कौन से मुनि आएंगे इनमें से? उत्तर दे चुके हैं यहाँ पर हमने नाम नहीं लिया था। क्यों कषाय कुशील क्यों नहीं? अभी गुणस्थान तो छठा सातवां ही था ना, पंचम काल में जन्मे थे, तो पंचम काल में जन्म लेने वालों का गुणस्थान आठवां नहीं हो सकता, सात तक के ही जा सकते हैं। तो भद्रबाहु स्वामी किन में आएंगे? अभी अपन पढ़ चुके हैं ऊपर जस्ट, कौन से मुनि के पास कौन सा संयम होता है, कौन से मुनि के पास कितना ज्ञान होता है, उस प्रसंग में ये बात आ जाती है। वो तो संयम की बात हो गई। अभी हमारा प्रश्न ये था कि भद्रबाहु स्वामी कौन से मुनि थे इनमें से, पांच में से? सबसे पहली बात तो ये बताओ कि भद्रबाहु स्वामी कौन थे? अंतिम श्रुत केवली थे ना, तो बस अब इसका उत्तर निकालो। क्या लिखा है उसमें, कौन से अनुयोग में मिलेगा वो वर्णन? अंतिम श्रुत केवली का वर्णन कौन से अनुयोग में मिलेगा? अभी अपना तीसरा ही तो अनुयोग चल रहा है प्रतिसेवना। बकुश मुनि के विषय में आचार्य अकलंक देव लिख रहे हैं कि बकुशो द्विविध, दो प्रकार के बकुशो, वो तो ज्यों कहते हैं तत्र उपकरण आभिष्वक्त चित्तो विविध विचित्र परिग्रह युक्त बहुविशेष युक्तो उपकरणाकांक्षी तत्संस्कार प्रतिकार सेवी भिक्षु उपकरण बकुशो भवति। और उसको स्पष्ट किया उन्होंने, पूज्यपाद स्वामी ने कुछ कम बताया था, इन्होंने उसको और खोल दिया, क्योंकि आगे आगे के जीवों को थोड़ा सा और समझाना पड़ता है, नहीं तो वो उन्हीं शब्दों को पकड़ कर बोलेंगे कि अरे ये हम इनको नहीं मानते, फट से बोल देंगे बिल्कुल हम इनको नहीं मानते। तो यहाँ आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि इतना हवा में मत उड़ो, बात को समझो। क्या कह रहे हो कि बकुश मुनि जो होते हैं उसमें उपकरण बकुश जो मुनि होते हैं वो उपकरणों में आसक्त होते हैं, उनका मन उपकरणों में आसक्त होता है और विविध विचित्र परिग्रहों से युक्त होते हैं। अनेक प्रकार, विविध यानी अनेक प्रकार के, और विचित्र, विविध भी लिखा है और विचित्र भी लिखा है, परिग्रहों से युक्त होते हैं। और भावलिंगी मुनि है ये मुनि नमो लोए सव्वसाहूणम वाले मुनि है। तो इनके बारे में आप ये कहो कि भाई तिल के छिलके के बराबर भी अगर परिग्रह साधु ले लेते तो निगोद जाते हैं, ये जो स्टाइल है ना, कुंद कुंद आचार्य ने लिखा, सूत्र पावन में लिखा, हम गाथा बता सकते, अरे वाह भाई वाह, क्या स्वाध्याय किया, गजब। करतल ध्वनि से स्वागत करना चाहिए आपके स्वाध्याय का। तो आचार्य अकलंक देव क्या है, अनाचार्य है क्या? आचार्य कुंद कुंद स्वामी का अभिप्राय समझ में आएगा तो रोना आएगा अपनी धारणा पर। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का अभिप्राय इससे विपरीत नहीं है, नहीं तो आप तो ये विभाग कर लोगे फटाफट कि नहीं वो मूल आमनाएं थी और फिर ये दूसरी कोई आमनाएं है। अब मूल आमनाएं और दूसरी अकल नहीं है और ज्यादा बात करते हो आचार्यों के बारे में, उल्टी सीधी बात करते हो। बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, साधवाद न होने के कारण, हठवाद होने के कारण ये दुर्गति हो रही है, अर्थ का अनर्थ लगाते हो, कोई भी आपत्ति नहीं है। मुनि के अयोग्य परिग्रह अगर तिल के छिलके के बराबर भी अगर साधु ले ले तो निगुज जाएंगे, ऐसा अर्थ क्यों नहीं लगाते? ये जो परिग्रह है ये मुनियों के योग्य परिग्रह रखेंगे, वो सीटी नहीं रखेंगे। बताया था ना एक बार कि साधु साधु के योग्य परिग्रह रहेगा उनके पास, वो सीटी नहीं रखेंगे ऐसे पुलिस जैसे बुलाने के लिए किसी को सीटी बजाने, वैसे परिग्रह नहीं रखेंगे जो उनके लिए दोष कारक हो। परिग्रह की प्रशंसा कतई नहीं है, ये भी याद रखना, लेकिन ये बता रहे हैं कि भावलिंग के साथ ये सब संभव है और इसको जब तक नहीं पढ़ते तब तक आप साधुओं के प्रति ना जाने कैसे कैसे कषाय भाव करके आप कर्म बंद करते हैं। और क्या कह रहे हैं, बहुत खास खास उपकरणों की आकांक्षा रखने वाले और तत्संस्कार प्रतिकार से भी उसको सही करना और फिर उसको उसका प्रतिकार करना, कहीं गड़बड़ी है तो उतना उसमें से वो करना, प्रतिकार करना, उसका भी वो सेवन करते हैं, भले कारित रूप से या किसी भी रूप से करें जो उनकी भूमिका के योग्य है। वैसा करने वाले भिक्षु उपकरण बकुशो भवति, उपकरण बकुश होते हैं। फिर शरीर संस्कार से भी शरीर बकुश है, शरीर के संस्कार का सेवन करने वाले शरीर बकुश होते हैं। तो तेल अधिक जो लगाया जाता है शरीर में, औषध उपचार के रूप में लगाना अलग, शरीर संस्कार के रूप में लगाना अलग, पर वो जो राग है उनके शरीर के प्रति वो राग सर्वघाती कषाय जनित नहीं है, ये याद रखना। राग है शरीर के प्रति तभी तो शरीर संस्कार का सेवन कर रहे हैं, लेकिन वो बकुश मुनि है और बकुश मुनि आज जितने भी मुनि उपलब्ध हैं उनसे ऊपर की श्रेणी के मुनि हैं। तो अब आप विचार कर लो कि ये भी शक्य है। प्रतिसेवना कुशीलो, प्रतिसेवना कुशील जो है मूल गुणों की विराधना न करते हुए उत्तर गुणों में कुछ विराधना का प्रतिसेवन कर लेते हैं। और कषाय कुशील निर्गंत और स्नातक मुनियों के प्रतिसेवना नहीं है। इस तरह ये तीन अनुयोग द्वार आज यहां पर संपन्न होते हैं। अब पांच अनुयोग द्वार और बचे हैं, उनको अपन किसी अन्य सत्र में देख लेंगे। इसमें कहीं पर ऐसा भी उल्लेख था, हम और देखते हैं। तत्वार्थ वार्तिक देख लेंगे, उसको निकालेंगे। तो साधु जो है उनको सुपरमैन मत समझो, साधु एक इंसान है और एक इंसान के समान जो मनुष्य में कमियां होती है, जो मनुष्यों को आवश्यकता पड़ती है वो उनमें भी संभव है, बस उनको सर्वघाती कषाय नहीं रहेगी और असंयम वाली स्थिति नहीं आएगी, इतना ध्यान रखना है। रौद्र ध्यान नहीं करेंगे वो और अर्थ ध्यान में निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं करेंगे, ये भी एक महत्व की बात है। हो सकता है प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में वो पंक्ति हो जो हम ढूंढ रहे थे। शरीर संस्कारो अभ्यंग मर्दनादि, बिल्कुल जो हमने बोला था ना अभी वही पंक्ति लिखी है प्रभाचंद्र आचार्य ने कि शरीर संस्कार का अर्थ होता है तेल मालिश वगैरह। तो ये भी शक्य है, शरीर बकुश मुनि में ये भी पाया जाता है। वैयावृत्त के उपचार के रूप में वो भिन्न होते हैं स्थिति, यहाँ पर शरीर संस्कार के रूप में बताया। प्रतिसेवना का अर्थ विराधना। रात्रि भोजन वर्जन से कथम विराधने इति चेत, रात्रि भोजन त्याग की विराधना कैसे हो सकती है ऐसा यदि पूछो तो बोले छात्राधिकम रात्रो भोजयन विराधको भवति। कोई भूखा विद्यार्थी आ जाए उनका और दिन ढलने की स्थिति में हो तो उनको दया आ जाती है कि भाई ये नहीं तो कल ही भोजन मिलेगा इसको, तो अभी थोड़ा थोड़ा उजाला है तो ऐसे में उनको विराधना हो जाती है। और फिर उपसर्ग में तो होता ही है, फिर उपसर्ग में कोई जबरदस्ती उनके मुंह में डाल दे तो भी होता है पराभियोगात। ये प्रतिसेवना का वर्णन था। जैनम चेतुशासनम।